ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर शिक्षा को सरकार प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएगी, प्रधानमंत्री ओली ने जताई प्रतिबद्धता। विधि का शासन कायम करने के प्रयास में प्रतिपक्षी दलों का सहयोग रहेगा, गृहमंत्री रमेश लेखक ने जताया विश्वास। अब गर्भाशय के कैंसर विरूद्ध टीका एचपीवी अन्य निःशुल्क टीकाओं की सूची में हुआ शामिल। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के विरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद से हुआ पारित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आत्मनिर्भर शिक्षा के माध्यम से देश के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का विश्वास जताया। काभ्रे पलांचौक के धूलीखेल स्थित काठमांडू विश्वविद्यालय के आज 30वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रोजगारी ढूंढने वाली शिक्षा नहीं बल्कि रोजगारी सृजित करने वाली और आत्मनिर्भरता पर आधारित शिक्षा देने के उद्देश्य से सरकार आगे बढ़ रही है। मौके पर भारत के पटना स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर त्रिलोकनाथ सिंह ने कहा कि व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में दो देशों की साझेदारियों ने साझा प्रगति और दीर्घ विकास के मार्ग प्रशस्त किए हैं। दीक्षांत समारोह में केयू के विभिन्न संकायों के 1265 छात्रों ने दीक्षांत होने के प्रमाण पत्र प्राप्त किये। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने कहा कि काठमांडू महानगर पालिका ने महानगर वासियों को अपने घर आंगन में ही सरकार मौजूद होने का एहसास कराया है। 30वें महानगर दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि महानगर द्वारा काठमांडू वासियों को पहुंचाई गई सेवा अन्य स्थानीय तहों के लिए अनुकरणीय है। मौके पर काठमांडू महानगर प्रमुख बालेंद्र शाह ने कहा कि देश के सभी 77 जिलों के नागरिकों के रहने लायक महानगर बनाने की सोच पर वे केंद्रित हैं। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि पूर्वाधार विकास निर्माण संबंधी काम प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाए जाएंगे। आज चितवन के भरतपुर विमानस्थल पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उप प्रधानमंत्री सिंह ने ये बात कही। ये बताते हुए कि पूर्वाधार निर्माण के लिए योजना के साथ संरचना बनाने में समय लगता है, उन्होंने कहा कि बनी हुई विशेष संरचनाओं को संचालित करने के काम हो रहे हैं। उप प्रधानमंत्री सिंह के साथ ही चितवन पहुंचे गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि देश में कानूनी राज्य स्थापित करते हुए विधि का शासन कायम करने के काम में सरकार जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के इस काम में प्रतिपक्षी दलों का भी सहयोग रहेगा। आज ही नवलपरासी के नवलपुर में नेपाल प्रेस यूनियन द्वारा बुलाई गई प्रेस मीट में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि देश में दीर्घ विकास, शांति, सुशासन और समृद्धि को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। नेकपा एमाले केंद्रीय कार्यालय संगठन विभाग ने आज पार्टी के काम के विषय में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू की है। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासल में आयोजित स्थानीय तह में पार्टी के काम की समस्या और समाधान विषय कार्यशाला में महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि मिशन 2084 पर आधारित वार्षिक कार्य योजना क्रियान्वयन में विफल होने की छूट एमाले को नहीं है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि अस्थिर राजनीति का असर देश के अर्थतंत्र पर पड़ा है। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिज की आज काठमांडू में आयोजित 15वीं वार्षिक साधारण सभा में संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि राजस्व संकलन और खर्च प्रणाली में समस्याएं दिख चुकी है, सरकार का ध्यान अब इसके समाधान पर केंद्रित है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि अधिकार प्राप्ति की लड़ाई में किसी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे। आज रूपंदेही में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि संविधान में आम उत्पीड़ित समुदायों का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, फिर भी परिवर्तन विरोधी लोग अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने नेता कार्यकर्ताओं से 2084 के निर्वाचन में माओवादी को प्रथम शक्ति के रूप में स्थापित करने के हिसाब से काम करने का आग्रह किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G
फिजी
यो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को फोर्जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ बाबूराम भट्टराई ने कहा कि देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली आवश्यक है। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में नेपाल समाजवादी पार्टी नया शक्ति के अध्यक्ष भट्टराई ने कहा कि राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित होने के हिसाब से प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा नीति निर्माण करने तथा मंत्रिमंडल समावेशी और विषय विज्ञ के आधार से सभा बाहर से लाने के हिसाब से संविधान संशोधन किया जाना चाहिए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की ने कहा कि असल नियत और नैतिकता नहीं है तो संविधान बदलने से समस्या नहीं खत्म होगी। राष्ट्रीय टीका तालिका में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एचपीवी टीका को शामिल किया गया है। सरकार जापानीज इंसेफ्लाइटिस खसरा और रूबेला टाइफाइड निमोनिया पोलियो खांसी धनुष्टंकार हेपेटाइटिस बी हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा बी क्षयरोग करके कुल 11 रोग विरुद्ध के टीका निशुल्क देती आ रही है और अब सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ का टीका भी समावेश किया है। नेपाल पत्रकार महासंघ का इसी मार्ग शीर्ष 28 गते संपन्न निर्वाचन की मतगणना जारी है। अभी तक घाटी कोशी गंडकी लुम्बिनी बागमती प्रतिष्ठान एसोसिएट और सुदूर पश्चिम कर्णाली जुमला बाहेक प्रदेश के मतगणना में अध्यक्ष पद पर निर्मला शर्मा ने 3,973 मत प्राप्त किए हैं तो वहीं उनके निकटतम प्रतिस्पर्धी रमेश बिष्ट ने 2,829 मत प्राप्त किए हैं। बता दें कि अभी मध्य प्रदेश में मतगणना जारी है। बुटवल के तिनाव पुल पर बलेरो जीप अनियंत्रित होकर हुए हादसे में दंपति सहित 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। हादसे में जान गंवाने वालों में बुटवल 12 नया गांव के 71 वर्षीय तिलक राम खनाल उनके श्रीमती 67 वर्षीय गौरी खनाल और जीप चालक 21 वर्षीय हरि नेवपाने शामिल है। ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने संसद में अपने खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव के पारित होने पर आज कहा कि वह कभी हार नहीं मानेंगे। राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के माध्यम से यह बयान जारी किया है। यून ने अपने राष्ट्रपति कार्यालय की राह में इसे अस्थायी विराम करार देते हुए अधिकारियों से सरकार के क्रियाकलाप में स्थिरता बरकरार रखने का आह्वान किया। महाअभियोग प्रस्ताव पर संसद नेशनल असेंबली में मतदान हुआ जिसके समर्थन में 204 जबकि विरोध में 85 वोट पड़े। संसदीय वोट राष्ट्रपति के रूप में उनकी शक्तियों को निलंबित करता है। उन्हें संवैधानिक न्यायालय के फैसले का इंतजार है जो यह तय करेगा कि उनको औपचारिक रूप से पद से हटाया जाए या नहीं। यून ने 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लागू करने का आदेश दिया था जिसके कारण देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी। अधिकारी उन पर लगे विद्रोह के आरोपों की जांच कर रहे हैं। अदालत के पास यह तय करने के लिए 180 दिन का समय है यून को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए या नहीं। अगर उन्हें पद से हटाया जाए तो 60 दिन में आम चुनाव कराने होंगे। बता दें कि यून के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर संसद में दूसरी बार मतदान हुआ है। पिछले शनिवार को सत्तारूढ़ दल के अधिकतर सांसदों ने मतदान का बहिष्कार किया था जिसके चलते यून को कुछ राहत मिली थी। सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी के कुछ सांसदों ने तब कहा था कि वो दूसरी बार होने वाले मतदान से भाग लेंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मनिर्भर शिक्षा को सरकार प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ओली ने जताई प्रतिबद्धता। विधि का शासन कायम करने के प्रयास में प्रतिपक्षी दलों का सहयोग रहेगा। गृहमंत्री लेखक ने जताया विश्वास। अब गर्भाशय के कैंसर विरुद्ध टीका HPV अन्य निःशुल्क टीकाओं की सूची में हुआ शामिल। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद से हुआ पारित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।